इस दीवार के पीछे हुजूर, उस दीवार के पीछे अबू लहब, लेकिन बदनसीबी उसकी कि फैज हासिल नहीं कर सका। एथोपिया हजारों मील दूर मक्के से मदीने से, रोम हजारों मील दूर, बिलाल हबशी हबश से, सोएब रूमी या सलमान फारसी ईरान से गए और दीन का सितारा बनकर के चल गए। ये किस्मत होती है। बअसहुम बैनहुम शदीद تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بينهم قوم لا يعقلون, आपस में इनकी आंच सख्त है। सरकार आलम फरमाते हैं, फरमाते हैं ये आपस में खुद इनका दिल मिल थोड़ी रहा है। तो ये मुनाफिकीन और ये यहूद और नसारा जो हैं, अच्छा साहब, तो ये है कि تحسبهم جميعا जमीन व कुलूब हम सत्ता, ये मत समझो कि ये आपस में एक दूसरे के साथ इनका दिल भी मिला हुआ है। ये एक पॉलिटिकल गेम है जिसकी बुनियाद पर ये मुत्तहिद हो गए, वरना अंदर से खुद ये एक दूसरे के इतने दुश्मन है जिसका कोई हद नहीं, बहुत दुश्मन है एक दूसरे के। ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ, ये इसलिए कि वो बेअक्ल लोग हैं। अब उसके बाद एक मिसाल कुरान तमसील पेश कर रहा है, كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال امرهم ولهم عذاب اليم, کسی کہاوت جو ابھی قریب زمانہ میں ان سے پہلے تھے انہوں نے اپنے کام کا وبال چکھا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ كمثل الشيطان اذ قال للانسان اكفر, شیطان کی کہاوت اس کی مثال جب اس نے آدمی سے کہا کفر کر, شیطان نے آدمی سے کہا کفر کر, फिर जब उसने कुफर कर लिया बोला मैं तुझसे अलग हूं, मैं अल्लाह से डरता हूं जो सारे जहान का रब है। कौन? शैतान कहता है कि पहले कि कुफर कर। जब कुफर कर लेता है बंदा तो शैतान क्या कहता है, मैं तो भाई तुझसे बेजार, मैं अल्लाह से डरने वाला हूँ, सारे जहान का ही परवरदिगार है। तो कुरान कहता है कि फकान आकिबतहुमा अन्नहुमा फिन्नार खालिदैन फीहा, तो उन दोनों का अंजाम ये हुआ कि दोनों आग में हमेशा उसमें रहें और जालिमों को यही सजा सजा है। मामला क्या था, एक तमसील कुरान दे रहा है कि करीबन करीब में, अभी अभी जंगे बद्र को ज्यादा दिन नहीं गुजरा है, दो ढाई साल हुआ है, तीन साल हुआ है, इसी के अरसे में ये जंगे बद्र हुई है, इससे भी कम अरसे में हुई है। इन लोगों ने देख लिया है कि मुसलमानों की हैसियत क्या है, मुसलमान कितने स्ट्रांग हैं, और अल्लाह के हवाले से, उसके रसूल के हवाले से, अल्लाह अल्लाह के रसूल के हवाले से, ये कोई समझौता करने वाले नहीं, ये देख चुके हैं, ऐसी बात नहीं है। करीबन जाकू अबाल आमरी, चख भी चुके हैं कि बड़े बड़े रोसाए कुरैश मारे गए बहुत बुरी तरह से, तो ये अंदर से टूटे हुए हैं तुम्हारे बारे में। उसकी मिसाल बयान फरमा रहे, मैंने अभी वाक्य सुनाया ना कि इनका डेलीगेशन गया मदीने मक्के और काफिरों ने इनके बड़े बड़े इब्ने सूरिया वगैरह जो यहूदियों का बहुत बड़ा आलिम था, इब्ने सूरिया बहुत बड़ा आलिम था, उसने बुतों को सजदा किया था। उसकी मिसाल इब्ने तफसीर कुर्तबी के अंदर, कुर्तबी ने भी बयान फरमाया, इब्ने कसीर ने बयान फरमाया, एक वाकया लिखा है। वाकया ये है कि पुराने जमाने में यहूदियों का एक राहिब था, उसका नाम था बरसीसा, बरसीसा, उसके पास बड़ा जबरदस्त आबिद। ये हमारी जिंदगी में एक इंकलाब बर्पा कर सकता है, ये वाकया जो सुना रहा हूं। सोचें सुने कि जो लोग बुराइयों से बचने की कोशिश नहीं करते और ये कहते हैं कि अरे नहीं हमारे ऊपर उसका कोई असर नहीं होता, होता कहते हैं ना, नहीं यार हमारे ऊपर कुछ असर नहीं होता, उसका अंजाम इसमें बयान फरमाया गया। बरसीसा, इसके बारे में लिखा हुआ है कि قد تعبد في صومعته 70 سنه, 70 साल उसने अपने इबादत खाने में ऐसी बिलौस अल्लाह की खिदमत की जिसका कोई। एक दिन शैतान ने अपने चेलों के साथ एक मीटिंग की कि ये देख रहे हो कि बरसीसा बड़ी ही इन्हमाक के साथ अल्लाह की इबादत करता है, कौन है जो उसको गुमराह करेगा। तो एक शैतान तैयार हुआ कि मैं उसको गुमराह करूंगा। फिर वो आया, उसने इसके साथ रह करके इबादत करनी शुरू की। बड़ा आबिद, बरसीसा 10 दिन के बाद इफ्तार करता था, इसने 20 दिन के बाद इफ्तार करना शुरू किया। कौन था? शैतान खुद आबिद बन गया। वो एक बहुत ही परहेजगार की शक्ल धार करके बरसीसा के पास रहने लगा। तो बरसीसा इतना मुतासिर हुआ उससे जिसका कोई हदीद कि साहब ये तो मुझसे बड़ा आबिद है, मैं तो 10 दिन के बाद इफ्तार करता हूँ, ये 20 दिन में इफ्तार करता है। बरसीसा ने 20 दिन में किया तो 40 दिन बाद इफ्तार करता है, मैं तो कुछ सो भी लेता हूँ तो रात भर इबादत करता रहता। बड़ा मुतासिर हो गया। अब क्या हुआ उसके बाद? एक दिन एक औरत के दिल के अंदर ये वसवसा, यानी उसको एक पेट की बीमारी रचाई शैतान ने एक औरत के पेट में, और उसके भाइयों के 4 भाई उसके भाइयों के दिलों के अंदर ये बात डाली कि इसका इलाज सिवाय बरसीसा के कोई कर ही नहीं सकता। वो लोग बरसीसा के पास लेकर के आए, बरसीसा ने कोई तवज्जो नहीं की। फिर बरसीसा के दिल के अंदर और उसके भाइयों के दिल के अंदर ये बात डाले कि इसको आबिद के पास रहने दो ताकि यहां फायदा हासिल कर सके, ये चुनानती वो छोड़ गई होगी। फिर भी बरसीसा अपनी इबादत में लगा रहता था। एक दिन उसके दिल के अंदर बुराइयों के वसवसे डालने शुरू किए और काबू पा गया। इसीलिए कहा जाता कि अल्लाह जल्ल शानहू से हमेशा इस बात की पनाह मांगनी चाहिए कि रब्बे करीम उस मर्दूद अजली से बचा, इसलिए कि वो कहां से हमला करेगा आप सोच भी नहीं सकते, हमारे दिमाग में भी नहीं आ सकती वो बात, और किस तरह से जिंदगी की सारी इबादतों को एक चश्मे जदन में डुबो देता है आदमी एहसास भी नहीं कर सकता। हमेशा अल्लाह की मदद चाहनी चाहिए और अल्लाह ही से उसकी पनाह मांगी जाए कि ताकि उस मर्दूद के फरेब से आगे बच सके। बोलिए अब हुआ क्या? वो औरत रहने लगी इसके साथ, इसके दिमाग में बरसीसा जैसे आबिद के दिमाग में उसने बुराइयों के वसवसे डाले, उसने उससे गलत काम किया। फिर वो हामिला हो गई। अब फिर उसके बाद बरसीसा के दिमाग में वही शैतान वसवसे डाल रहा है कि देख तू इतना बड़ा आबिद बना हुआ है ना, तेरी इबादतों के बड़े चर्चे हैं, दुनिया तेरे बारे में क्या कहेगी, लिहाजा इसको कत्ल कर दे। उसको कत्ल कर दिया। कत्ल करने के बाद कहा कि इसको ले जाए कहीं पे दफन कराओ, जाके दफन कर दिया। उधर वही शैतान उसके चारों भाइयों के दिमाग में इस बात को डालता है कि बरसीसा ने तेरी बहन के साथ ऐसे ऐसी हरकत की और उसको कत्ल कर दिया। कत्ल करने के बाद ख्वाब में आकर के बताता है कि कत्ल करने के बाद फलाने के दफन किया गया। उसके चारों भाइयों ने एक ख्वाब देखा। इब्न कसीर फरमाते हैं कि चारों भाइयों ने सेम ख्वाब देखा। सुबह उठ करके चारों ने एक दूसरे के साथ जब बयान किया तो गए उस वक्त के बादशाह के पास और कहा कि चल करके इसका फैसला कीजिए। बादशाह साथ में हुआ और आया, उसके बाद उसकी कब्र खोदी गई जहां दफन किया गया था, बरसीसा को कत्ल कर दिया। देख रहे जब चलने लगे कत्ल करने के लिए तो बरसीसा से शैतान कहता कि अगर मुझे एक बार सजदा कर दे मैं वरना बचा लूंगा। अब तक की मंजिल जो थी वो इसके ईमान के जाने की नहीं थी, बदअखलाकी थी, लेकिन बंदा मोमिन था। आदमी गुनाह से बड़ा कर ले अगर उसको हलाल होने का यकीन और एतकाद न रखे तो मोमिन है वो, लेकिन जहां किसी गैर खुदा को सजदा किया अब मोमिन नहीं रह सकता। तो शैतान ने कहा कि मुझे सजदा कर ले तो मैं उसको बचा लूंगा। क्या करता मरता, सजदा कर लिया बरसीसा ने उसको, तो क्या कहता है कुरान कहता है ना कि فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنْكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ। जब बरसीसा ने उसको सजदा कर लिया तो कहने लगा क्या, जब बरसीसा ने कुफर कर लिया तो शैतान बोलता है कि मैं तो भाई तुझसे बरी हूं, मैं अल्लाह से डरता हूं, मेरा तुझसे कोई सरोकार नहीं। यही मिसाल इनकी है। ये मदीने मनवरा में रह करके वहां गए, वहां उन बुतों को सजदा किया, शैतान ने कितने गुड़ खिलाए, कैसी कैसी साजिशें की, और उसके बाद इस जैसे अहले किताब लोगों को कुफर की जंजीर पहना करके वो चलता बनाया। ये तरह की सूरत हाल हुई थी। जब जंगे बद्र वाकई हुई थी तो शैतान ने आदमियों की शक्ल अख्तियार करके अबू जहल को शैतान ही लाया था मैदान में। अबू जहल आने के लिए तैयार नहीं था जंगे बद्र के दिन। चुनांचे आदमी का रूप धार करके अबू जहल को बहुत समझाया कि चलो मैं तुम्हारे साथ मेरा पूरा कबीला तेरे साथ मदद करेगा और हम मिल करके लड़ेंगे मुसलमानों से। और जब उसके बाद आया अबू जहल मैदान में उतर गया, जान दो क्या कहता है, मैं जो देख रहा हूँ तुम नहीं देख रहा हो, मैं तो भाई नहीं कर सकता, इनके साथ भाग गया वहां से। ये शैतान की साजिशें हैं। इसीलिए कहा गया कि अल्लाह ताला के फजल उसके करम को बंदा हमेशा तलाश करता रहे और कदम कदम पर अल्लाह की पनाह मांगे कि अल्लाह तू ही इसके मकर से इसके फरेब से हिफाजत फरमाने वाला है, और ना हमारे बस की बात नहीं कि हम इसके फरेब से बच सकें। और दूसरी बात ये कि लंबी दाढ़ी, सफेद पजामा, ऊंची टोपी, पेशानी पर सजदों के निशानात, ये इस बात की दलील नहीं है कि बड़ा परहेजगार है। ये दलील नहीं है। शेख साजी फरमाते हैं, अय दुरूनत बरहनाज तकवा किस बुरू जामे रे अदाली, अय वो इंसान तेरा दिल तकवा से खाली है, ये लंबी आस्तीन का कुर्ता क्यों पहन करके लोगों को फरेब दे रहा है कि मैं बड़ा परहेजगार हूं। मगर बुराई अच्छाई जब का लिबास पहन ले तो फिर उस वक्त किसी हकीम हाजिर की जरूरत होती है कि ताकि वो नब्ज पर हाथ रखने के बाद फैसला कर सके कि चीज गलत है, चीज अच्छी। और आजकल इसी का एक ढोंग रचा दिया गया है। अब इसमें किसी को बोलने की गुंजाइश नहीं है, जो जैसा कर रहा है करने दीजिए, अल्लाह बचाए इससे। आखिरी सूरह हज शरीफ का मैं एक साथ पूरे रुकू की तलावत कर रहा हूं तर्जमे की, पूरे रुकू की, इसलिए कि पूरा रुकू मरबूत है। अब सुने, ए ईमान वालों अल्लाह से डरो और हर जान देखे कि कल के लिए क्या आगे भेजा, और अल्लाह से डरो, बेशक अल्लाह को तुम्हारे कामों की खबर है, और उन जैसे ना हो जो अल्लाह को भूल बैठे तो अल्लाह ने उन्हें बला में डाला कि अपनी जानें याद ना रही, वही फासिक थे। दोजख वाले और जन्नत वाले बराबर नहीं, जन्नत वाले ही मुराद को पहुंचे। देख रहे हैं उसलू, जन्नत वाले ही मुराद को पहुंचे। यहां तक बयान करने का मकसूद क्या है कि ये मुनाफिकीन, ये यहूद, इन लोगों ने जो किया है ये आगे चल करके खुद अपने किए की सजा भुगतेंगे और कयामत के दिन अपना देखेंगे। लेकिन आयत तो किसी खास माहौल में उतरी है, जिसको मैं कहता हूं ना, यानी इस्तिलाही अल्फाज में, कि आयत का मौरिद खास जरूर है मगर इसका हुक्म आम है। इस आयत में इत्तकुल्लाह दो मरतबा फरमाया गया है। देख रहे हैं ना, या अय्युहल्लज़ीना मनुत्तकुल्लाह वलतंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द, फिर कहा कि वत्तकुल्लाह, दो बार फरमाया गया। इससे ये बात महसूस होती है कि अल्लाह से खौफ और तकवा और डरने की कितनी अहमियत कुरान जान फरमा रहा है। ए ईमान वालों अल्लाह से डरो, वलतंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द, और हर जान देख लेगी कि कल के लिए क्या भेजा है। हम जो यहां कर रहे हैं ये आखिरत के लिए स्टोर कर रहे हैं, अच्छाई करें तो स्टोर कर रहे हैं और बुराई करें तो स्टोर कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम तो भूल गए तो मिट जाएगा वो, हमारे भूलने से वो मिटने वाला नहीं है। हर जख्म अपनी जगह उसी तरह ताजा रहेगा जिस तरह से आपने अव्वल दिन किया था। गुनाह जो है ये जख्मी तो होता है, गुनाह का आदमी जो गुनाह करता है ये जख्म है। दरअसल हमारी हयात के दामन पर गुनाह के ये जख्म है, ये आबले हैं सब। झूठ बोलना, जिना करना, शराब पीना, गीबत करना, चोरी करना, बेइज्जती करना, अल्लाह के हुक्म को ना मानना, ये सब हमारे दामन हयात पर आबले हैं ये, और उसी तरह से ताजा है जिस तरह से एक आदमी अगर शराब पीता है उसने जो पहला घूंट पिया था, जिस वक्त उसके नफ्स को चोट लगी थी, उसका नफ्स उसका उसके उसकी रूह जख्मी हुई थी, उसके रूह को चोट लगी थी, उसका रूह जख्मी हुआ हुई थी, वही जख्म बेआईनी उसी तरह से क्यामत के दिन हमारे सामने पेश किया जाए, इसको याद रखें। तो कुरान कह रहा है कि वल तंजुर नफ्स मा कद्दमत लिगद, आप देख लो कि हर जान कद के लिए करके क्या भेजती है। फिर कर कुरान ने कहा कि वत्तकुल्लाह, अब भी अल्लाह से डरो, इन्नल्लाह खबीरुम बिमा तअमलून, जो तुम कर रहे हो ना हर एक चीज की अल्लाह को खबर है, उसकी निगाह कुदरत से कोई चीज छुपी हुई नहीं। अगर आदमी 70,000 पर्दों के पीछे किसी बुराई को कर रहा है, जब भी निगाह कुदरत के मुशाहिदे और ये बहुत ही यानी लर्जा देने वाला लम्हा है जिंदगी। मैंने दोबारा में तकरीर में वो पहलू बयान किया था ना कि हजरत काब रजी अल्लाह तआला जो गज़वे तबूक में हुजूर के साथ जंग में हाजिर नहीं हो सके, हजरत काब, हजरत हिलाल इब्न उमैया और हजरत मुरारा इब्न रबी, ये तीन सहाबी थे जो बद्र में से शरीक हुए थे, लेकिन बस वक्त था कि गज़वे तबूक में हाजिर नहीं हो सके। और गज़वे तबूक इस्लाम की इतनी मुश्किल जंग जिसका किया, जब हुजूर तशरीफ लाए तो इन तीनों को अलग कर दिया। हजरत काब अपना दर्दंगेज वाकया बयान करते कहते हैं कि जब हुजूर ने मुझसे बोलना छोड़ दिया, तमाम मुसलमानों ने मुझसे बोलना छोड़ दिया, मेरी बीवी को भी हुजूर ने मुझसे अलग कर दिया, तो मुझे सिर्फ एक ही फिक्र थी, एक ही गम कि अगर खुदा ना खास्ता मैं मर जाऊं, जुमला देखें, अगर खुदा ना खास्ता मैं मर जाऊं तो ना हुजूर मेरी जनाजा पढ़ाएं, ना सहाबा मेरी जनाजा पढ़ाएं, मैं रहूंगा कहां, जाऊंगा कहां, मेरी क्या हैसियत उसके बाद। ये कोई मामूली बात क्या आ रही है? अगर ईमान की नूरानियत और रूहानियत है तो सिर्फ हजरत काब के जिंदगी का सिर्फ यही एक सतर ही जुमला एक मुसलमान की जिंदगी बदलने के लिए काफी है। और अगर इमाम का मुसलमान है और कुछ भी करने के लिए तैयार है तो जो भी जाएगा, ये बड़ा एजाज है, ये बहुत बड़ा एजाज है। तो हुआ क्या? और वला तकुनु कल्लज़ीना नसुल अल्लाह, उस तरह ना हो जाना जो लोग अल्लाह को भूल बैठे। यहूदियों ने भुला दिया, मुनाफिकों ने भुला दिया, तो रब्बे करीम ने क्या किया कि फांसाहुम अनफसहुम, तो अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें मुसीबतों में डाल दिया है, अभी अपने नफ्स के फरेब से निकल नहीं पा रहे हैं। फासिक लोग हैं ये, अल्लाह के नाफरमान लोग हैं। बात हो गई मुकम्मल। फिर क्या कहा कि क्या जहन्नमी जन्नती के बराबर हो सकता है? कोई सवाल ही नहीं पैदा होगा। एक जन्नती एक जहन्नमी के बराबर कैसे, एक जहन्नमी जन्नती के बराबर कैसे हो जाएगा? जन्नती का मेयार कुछ और, जहन्नमी का मेयार कुछ और। सूरह 8वें पारे में सूरह आराफ शरीफ के अंदर बयान फरमाया, वनाद अस्हाबुल जन्नत अस्हाबन नार अन कद वजदना मा वअदना रब्बुना हक्कन फहल वजदतुम मा वअद रब्बुकुम हक्कन कालू नअम। जन्नतियों ने जहन्नमियों से कहा कि अल्लाह ने हमसे जो वादा किया था उसने तो पूरा कर दिया, कि अबे जन्नत में पहुंचा दिया, नेमतें दी। तुम्हारे खुदा ने तुमसे जो वादा किया था क्या तुमको मिला? कालू नाम, बोले हाँ मिल गया, हमको भी जानने में डाल दिए गए। उसी में फिर फरमाता है अल्लाह, वनाद अस्हाबुन नार अस्हाबल जन्नत अन अफीदु अलैना मिनल माई औ मिम्मा रज़क़कुमुल्लाह क़ालू इन्नल्लाह हर्रमहुमा। जहन्नमियों ने जन्नतियों से कहा, क्या कहा? अन अफीदु अलैना मिनल माई औ मिम्मा रज़क़कुमुल्लाह, वो पानी जो अल्लाह ने तुम्हें अता फरमाया है जन्नत में, वो रिज्क जो अल्लाह ने तुम्हें जन्नत में अता फरमाया है, जरा हमको भी थोड़ा सा दे दो। जहन्नमी जन्नतियों से फरमाइश कर रहा है, जन्नतियों इज नॉट रहा है, इन्नल्लाह हर्रमहुमा। नहीं नहीं नहीं, ये दाना और पानी, ये खाने और रिज्क और पानी, ये सब तुम्हारे ऊपर हराम कर दिए, तुमको कुछ भी नहीं मिल सकता यहां से, तो क्या बराबर हो सकते तो? नहीं, जन्नती ही कामयाब है। लव अंजलना हाजल कुरान, अगर हम ये कुरान किसी पहाड़ पर उतारते तो जरूर तू से देखता झुका हुआ पाश पाश टुकड़े टुकड़े होता अल्लाह के खौफ से। और ये मिसालें लोगों के लिए हम बयान फरमाते हैं कि वो सोचें قرآن کی عظمت، قرآن کے احکام. بیسویں پارے کی ایک آیت سورہ احزاب کی غالباً ایک آیت کریمہ ہے، ان عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا. اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے ایک امانت تھی، اس امانت کو آسمانوں پر پیش کیا، زمین پر پیش کیا، پہاڑوں پر پیش کیا، سب نے انکار کر دیا، کوئی اس کو اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہوا، نہ آسمان نہ زمین نہ پہاڑ. مگر جب اس امانت کو ہم نے انسان پر پیش کیا تو انسان نے اسے قبول کر لیا. انہ کان ظلوما جہولا، بڑا بھولا انسان، نہ بہت بھولا ہے، قبول کر لیا اس نے. فرمایا گیا کہ اگر پہاڑ انہیں انسانی شعور دے دیا جائے، بڑے بڑے پہاڑ انسانی شعور انسانی احساس دے دیا جائے اور ان سے یہ کہا جائے کہ یہ قرآن ہے تمہارے اوپر اتارنا چاہتے ہیں، قبول کرو گے تو انکار کر دیں گے. وہ لرائیتہ خاشعا متصدیا، خشوع کہ تو اسے جھکا ہوا ٹیڑھا دیکھ لے گا، پاش پاش ٹکڑے ٹکڑے ریزہ ریزہ دیکھ لے گا. یہ قرآن کوئی معمولی بات نہیں. وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، یہ مثالیں لوگوں کے لیے ہم بیان فرماتے ہیں کہ سوچیں. امام قرطبی نے بڑی زبردست بات یہاں پہ لکھی ہے، کہتے ہیں وَقِيلَ الْخِطَابُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيْ لَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ يَا مُحَمَّدُ عَلَى جَبَلٍ لَّمَا ثَبَّتَ وَتَصَدَّعَ مِن نُّزُولِهِ عَلَيْهِ وَقَدْ أَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَثَبَّتْنَاكَ لَهُ فَيَكُونُ ذَلِكَ امْتِنَانًا عَلَيْهِ أَن ثَبَّتَهُ لِمَا لَا تَثْبُتُ بِالْجِبَالِ. خطاب ہے اس میں حضور کو، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قرآن اگر پہاڑ پر اتارتے تو پہاڑ تو اس کو نہ برداشت کر سکتا، لیکن ہم نے اس کو تمہارے اوپر اتارا اور تم ثابت قدم ہو، ثبتنا کا ثابت قدم ہو. تو یہ اللہ جل شانہ کا احسان ہے کہ پہاڑ جس چیز کو نہ برداشت کر سکے اسے قلب مصطفیٰ برداشت کر دیتا ہے. یہ عظمت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضور ہی کے وسیلے سے پوری امت کے وہ حفاظ جو قرآن پاک کی عظمت اور تقدیس کو اپنے سینوں کے اندر محفوظ کر لیتے ہیں، 30-12 چھوٹے چھوٹے بچے یاد کر کے اس کو محفوظ کر لیتے ہیں، یہ صرف حضور کے وسیلے سے ہے. بس اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے کے بغیر قرآن کو اگر کسی کو یاد کرنے کی جرات دی جاتی تو ہرگز یاد نہیں کر سکتا تھا. یہ واسطہ ہے حضور کا، حضور کے وسیلے سے امت کے حفاظ جو قرآن کو حفظ کر لے رہے ہیں، حضور کا واسطہ اس بنیاد پر حفظ کر لے رہے ہیں، ورنہ ہرگز نہیں کر سکتے تھے. اب اندازہ کر لیں. اس کے بعد اب یہ تین آیتیں سورہ حشر کی بڑی عظیم ہیں، تینوں کا ترجمہ پڑھ ڈالیے. وہی اللہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں، ہر نہا و آیا چھپے ڈھکے کا جاننے والا، وہی ہے بڑا مہربان رحمت والا. وہی ہے اللہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں، بادشاہ نہایت پاک سلامتی دینے والا، امان بخشنے والا، حفاظت فرمانے والا، عزت والا، عظمت والا، تکبر والا. اللہ کو باقی ہے ان کے شرک سے. وہی ہے اللہ بنانے والا، پیدا کرنے والا، ہر ایک کو صورت دینے والا، اسی کے ہیں سب اچھے نام، اسی کی پاکی بولتا ہے جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے، اور وہی عزت و حکمت والا ہے. اتنے زیادہ اللہ جل شانہ کے اسماء حسنہ کہیں اکٹھا قرآن پاک پہ نہیں آئے، اتنے زیادہ ایک ساتھ. اب ان ناموں کے تعلق سے تفصیل میں جاؤں تو زیادہ لمبا وقت ہو جائے گا، لیکن پھر بھی دوبارہ تو تفصیل کرنے کا نہیں ہوگا موقع نا، اس لیے کہ 13 سال تو ہو گیا، 13 سال کے بعد 13 سال کہاں سے لاؤں گا میں، اس بنیاد پر چلنے دیجیے تھوڑا سا اور ٹائم دے دیجیے. اب دیکھیں الملک اسے کہتے ہیں کہ جو ہر چیز جس کے قبضے میں ہو وہ دراصل وہی دراصل اونر ہو، وہی دراصل اس کا مالک ہو. تو کائنات کی ہر شے اللہ کی ملکیت ہے، اللہ کے قبضے میں. ہاں हाँ अल्लाह तबारक ताला और जिसको चाहे अता फरमा दे। चुनांचे बंदा जो किसी चीज का मालिक होता है, ये बंदा दरअसल उसका मालिक नहीं है बल्कि अल्लाह की अता व फजल से बंदा उसका मालिक बनता है। मिल्कियत दरअसल अल्लाह ही की, उसे मलिक कहते हैं। अल-कुद्दूस उसे कहते हैं कि जो अपनी पाकीजगी और सफाई में इंतहा को हो, यानी उसके यहां किसी तरह की कोई कमी, कोई नक्स, किसी बुराई का शुबहा तक भी ना गुजरे। इसीलिए अल्लाह की जो तारीफ या डिफिनेशन अल्लाह की बयान फरमाएगी वो ये है कि हुआ अल मुस्तजमियो ले जमी सिफात हिल कमालिया। अल्लाह उसे कहते हैं कि जो तमाम कामिल जामे सिफतों का मालिक हो, यानी उसके यहां किसी तरह का ना कोई नक्स है, ना कमी है, कुछ नहीं, यतनी जामियत कमाल है, वो सब अल्लाह के लिए बस। और अस्सलाम सलामती वाला, सलामती के ताल्लुक से बयान फरमाया गया, अभी हदीस सुनाऊंगा पहले इसकी तशरीह कर दूं। अल मोमिन अल मुसद्दिक लिरसूलिही बिल मुअजजात, कि जो पैगंबरों के मोजजों की तस्दीक फरमाए उसे मोमिन कहते हैं। अल मुहैमिन जो हर चीज पर गालिब हो। अल अजीज कवि और गालिब। अल जब्बार कहार बड़ा। अल मुतकब्बिर के अजमत व बड़ाई सिर्फ उसी की जात की हो। अल बारी जो किसी को अजसरे नौ पैदा करे, पहले नहीं थी बाद में पैदा किया। दो वर्ड यहां पे आए हैं कि अल खालिक अल बारी दोनों आया है ना। खालिक कहते हैं पैदा करने वाले को मुतलक, और बारी कहते हैं कि अजसरे नौ पैदा करे जो जो उससे पहले उस किस्म की कोई चीज नहीं थी। चुनांचे कायनात नहीं थी फिर उसने पैदा किया ना, तो कायनात के हवाले से अल्लाह बारी है, लेकिन हमारे आपके हवाले से अल्लाह खालिक है। क्यों? इसलिए कि हमारा तो सिलसिला चला रहा सीधा आदम अलैहिस्सलाम से। आदम अलैहिस्सलाम के लिए अल्लाह बारी है, हमारे लिए अल्लाह खालिक है, इसलिए कि हमारा तो एक सिलसिला है ना भाई, हाथ पैर आंख नाक कान। इसी तरह से आदमी सीधा आदम अलैहिस्सलाम से पैदा होता चला रहा है, लिहाजा हमारे लिए बारी का इस्तेमाल करना इस माना करके जायज नहीं होगा। अरे बात समझ में आई यार, बोर हो रहे हैं आप लोग क्या? अच्छा, अल मुसव्विर खालिक सुवर अला मा युरीद, ऐसी तस्वीर बनाने वाला के जिसकी कोई तस्वीर दूसरे की तस्वीर के साथ मुशाबे ना हो, फर्क रखती हो, उसे मुसव्विर कहते हैं। अल्लाह जल्ला शानू ने आप देखें कि कितने लोगों को पैदा किया है, क्या किसी की तस्वीर किसी से मिलती जुलती है? मिलती जुलती है। आर्ट जो लोग बनाते हैं, जो लोग तस्वीर कशी करते हैं, स्केचिंग करते हैं, आर्टिस्ट 100 तस्वीरें बनाए तो कहां तक बनाएंगे, 500 बनाने, 5000 बनाने कहां तक बनाएंगे? कहीं ना कहीं उनका दिमाग थक जाएगा। लेकिन अल्लाह की तस्वीर ये है कि वही चीज है सबके साथ है, लेकिन फर्क देखिए। सुभान अल्लाह। इमाम कुर्तबी ने इस सिलसिले में जो अक्वाल नकल फरमाए हैं उसको मुलाहिज़ा फरमाइए। अल्लाह वकाल इब्न अब्बास इदा कान यौम अल क़ियामति अखरज अहल तौहीद मिन अन्नार व अव्वल मन युखरज मन वाफ़क इस्महु इस्मा नबिय्यिन हत्ता इज़ा लम यबक़ फ़ीहा मन युवाफ़िक इस्महु इस्मा नबिय्यिन क़ाल अल्लाह तआला लिबाक़ीहिम अंतुमुल मुस्लिमून व अना अस्सलाम व अंतुमुल मुमिनून व अना अल मुमिन فَيَخْرُجُهُمْ مِنَ النَّارِ بِبَرَكَةِ هَذِهِ الْأَسْمَائِنِ الْمُهَيْمِنِ الْمُؤْمِنِ يَا السَّلَامُ الْمُؤْمِنِ। ترجمہ سنیں، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ قیامت کے دن اللہ جل شانہ اہل توحید کو جہنم سے نکالے گا، تو سب سے پہلے جو لوگ نکالے جائیں گے وہ لوگ ہوں گے کہ جن کے نام نبی کے نام پر ہوں گے۔ اب سبحان اللہ، بولیے، जिनके नाम नबी के नाम पर होंगे। नबीयिन कह करके इस बात को आम कर दिया है कि अंबियाओ मुरसलीन जितने गुजरे हुए उनमें से किसी भी नबी के नाम पर नाम रख दीजिए। लेकिन एक कवी कौल जो है वो ये है कि इस्मा नबीयिन से मुराद यहां हुजूर का इस्मे पाक होना चाहिए, कि हुजूर के इस्मे पाक पर। अब हुजूर का इस्मा मुबारक तो दो खास है, कौन कौन से? और अहमद, मोहम्मद और अहमद। बकिया आसमाय मुबारका उसकी कोई हद व नहायत नहीं, 4000 तक तो सैयदी आला हजरत मुस्तफा ने फरमाया है। आई बात समझ में? अब इससे हट करके और कोई दूसरा नाम रखना चाहे तो फिर अब वो तलाश करे कहां पाएगा। तो सबसे पहले जो लोग निकाले जाएंगे जहन्नम से, यानी वो मोमिन जहन्नम में जाएंगे, वो लोग होंगे जिनका नाम नबी के नाम की तरह से होगा। इसलिए उलमा ने फरमाया कि हुजूर के अस्म पाक के साथ अपने नाम को मुस्तक करके रखा करो ताकि उस नाम की बरकतें तुम्हें मिलती रहे। मगर मुसीबत यहां यह है कि एक बहुत बड़ी बिदात ईजाद की गई इसमें कि क्या बच्चों के नाम ऐसे रखने चाहिए कि मुझको तो पागल बना देते हैं लोग। यकीन कीजिए एक एक औरत की काल पर 30-30 नाम को मैं ढूंढ करके निकालता हूं तो उसको पसंद आता है कोई, और मैं इसको बंद कर दूंगा कि भाई तुम्हारा जो ना दिल जाए कर, इतना टाइम मेरा बर्बाद जाता है उसमें, इसका मैं बतलाता हूं उसकी फजलत, देखो ये नाम ऐसा है, नहीं ये नहीं दूसरा बताइए, ये नाम ऐसा नहीं दूसरा बताइए। अजीब सी बात, नई यानी उनको नया नाम चाहिए। तो मैंने कहा फिर टोयोटा करोला नाम रख लो और क्या रखा, यही एक नाम है अच्छा, हुजूर के नाम पर नाम रखो। फिर फरमाया कि हत्ता इजाला मैं बकाफी या मैं आपको इस्मा इस्मा नबीन, जब वो लोग जिनके असमा नबी के नाम पर नहीं रहेंगे अब बाकी रहेंगे जहन्नम के अंदर, अब उनको निकालने की बारी आई। قال الله تعالى لباقيهم بقي لهم فرمائے گا انتم المسلمون وانا السلام، جہنم میں رہنے والے وہ لوگ جن کے نام نبی کے نام پر نہیں نا، ہو تو مسلمان، تم مسلمان ہو میں سلام، تم وانتم المؤمنون وانا المؤمن، تم لوگ مومنون ہو میں مومن ہوں۔ واللہ جل شانہ بقیا لوگوں کو السلام اور المؤمن کے برکات کے نام کی بنیاد پر جہنم سے نکال دے گا۔ سبحان اللہ سبحان۔ پھر فرمایا حضور کی حدیث پاک نبی رہتا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فیما یرویہ عن ربہ تبارک و تعالی انہو قال الکبریاء ردائی والعظمت ازاری فمن نازعنی فی واحد منہما قسمتہ ثم قذفتہ فی النار۔ کیا کبریائی، تکبر، یہ میری چادر ہے، اللہ فرماتا ہے تکبر میری چادر ہے اور عظمت میرا ازار ہے، پاجامہ ہے۔ یہ الفاظ تشبیہی ہیں، اس کا مطلب پاجامہ نہیں جو ہم پہنتے ہیں، یہ صرف ہمارے سمجھانے کے لیے ہے بس۔ تو جو شخص میرے تکبر اور میری عظمت کے حوالے سے مجھ سے منازعات کرے، شرکت چاہے کہ وہ بھی متکبر بن جائے، وہ بھی عظیم بن جائے میری ذات کے حوالے سے، تو میں اسے سیدھے جہنم میں ڈال دوں گا۔ لہذا تکبر صرف اللہ کی ذات کے لیے، صرف کسی آدمی کو زیبا نہیں کہ آدمی تکبر کرے۔ سورت کے آخر کے حوالے سے گفتگو کرتے کرتے بات ختم کر دی جائے۔ عن ابي هريره قال سالت خليلي ابو القاسم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اسم الله العظم فقال يا ابا هريره عليك باخر سور سور الحشر فاكثر قراءتها۔ حضرت ابو هريره کہتے ہیں کہ میں نے اپنے خلیل ابو القاسم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اللہ جل شانہ کے اسم اعظم کے بارے میں۔ اسم اعظم کے پیچھے آدمی پڑا رہتا ہے نا کہ اسم اعظم کیا ہے، اسم اعظم کیا ہے، میں نے پوچھا رسول اللہ اسم اعظم کیا ہے، حضور نے فرمایا ابو ہریرہ سورہ حشر میں جو آخر میں ہے نا اس کو زیادہ سے زیادہ تلاوت کیا۔ یہ نہیں بتلا کہ اسم اعظم یہی، بلکہ یہ فرما دیا کہ جو آخر کی تین آیتیں ہیں نا هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشهادۃ سے وہاں سے لے کر کے آخر تک اس کو زیادہ پڑھا کرو۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے حضور سے پھر سوال دہرایا تو حضور نے پھر وہی جواب دہرا دیا، کہتے ہیں پھر میں نے سوال دہرایا حضور نے پھر وہی جواب دہرا دیا، تین مرتبہ میں نے اپنے سوال دہرایا کہ اس میں اعظم کیا ہے، تو حضور نے فرمایا سورہ حشر کی آخری آیتوں کو پڑھا کرو۔ اچھا صاحب، حضرت انس بن مالک کی روایت ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص سورہ حشر کو پڑھے اللہ تبارک و تعالی اس کے اگلے پچھلے گناہ کو بخش دیتا ہے۔ سورہ حشر پوری حضرت ابو امامہ باہری کی روایت ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا من قرأ خواتیم سورة الحشر فی لیل او نہار فقبضہ اللہ فی تلک اللیلۃ او ذلک اليوم فقد اوجب اللہ له جنہ. جو شخص سورہ حشر کی آخر کی خواتیم سورہ حشر آخر کی آیتیں پڑھے, دن میں پڑھے یا رات میں پڑھے, تو جب بھی وہ مرے گا, دن میں مرے یا رات میں مرے, تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کے لیے جنت کو واجب قرار دے دیتا ہے. اور روایت مشکات کے حوالے سے بیان کر چکا ہوں کہ جو شخص صبح کے وقت سورہ حشر کی تینوں آخری آیتیں پڑھ لے تو 70,000 فرشتے اس پر موکل فرماتا ہے, مقرر فرماتا ہے, اور وہ فرشتے اس کی بخشش کی دعا کرتے رہتے ہیں. اور اگر شام کو پڑھتا ہے تو شام کو 70,000 فرشتے اللہ مقرر فرماتا ہے جو صبح تک اس کی بخشش کی دعا کرتے رہتے ہیں. یا ذرا اشنبی کو ترجمہ کر کے بتا دو قسم سے, وہ بہت ہمارا اشنبی بھائی سن ول ٹرانسلیٹ دس از ویری امپورٹنٹ حدیث انشاءاللہ. آئی تھنک سی ول ریسائٹ ایوری مارننگ اینڈ ایوننگ انشاءاللہ. تو آپ اس کو بتاؤ اجنبی کو کہ جو شخص سورہ حشر کی آخر کی تین آیتیں وہ اللہ علیہ پڑھتا ہے تو اس کے کتنے ثواب ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرماتا ہے اور 70,000 فرشتے مقرر فرما دیتا ہے کہ اس کی بخشش کی دعا کرتے رہتے ہیں صبح جام. یہ تھی سورہ حشر شریف, مکمل ہو گیا الحمدللہ رب العالمین. انشاءاللہ بقیہ اگلے جمعے کو. اللہم صلی علی سیدنا سیدنا مولانا محمد علی سلیم صاحب سامنا سیدی رسول اللہ. رب کریم قرآن مقدس کی تلاوت اور تفسیر میں اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہو اسے معاف فرما, اور جو کچھ بھی بیان کیا گیا ہے اسے اپنی بارگاہ کرم و فضل میں حضور کے وسیلہ جلیلہ سے قبول فرما لے. اور رب کریم ہمارا حشر اپنے محبوبین کے ساتھ فرما, حضور کی شفاعت عطا فرما, خصوصاً اس مردود ازلی ملعون شیطان ملعون و مردود سے, اس کے مکر و فریب سے مالک کو بچا لے, ایمان کی سلامتی عطا فرما, مکر و شرک بدعات اور گناہ صغائر و کبائر سے ہم سب کو بچا لے مالک مولا, اور جو سیاد ہوتے ہیں اسے اپنے کرم و احسان اور فضل سے معاف فرما دے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی و نوری آج کی سیدنا مولانا محمد علی و اصحابی اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.